उन्होंने कहा कि उनका अनुभव ये रहा कि ज्यादातर मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से कोई मैनेजर जो है वो शॉर्टकट पसंद करता है। तो उन्होंने फिर जब जो इलैबोरेट प्रोसीजर है, विस्तार से जो विधि है प्राण प्रतिष्ठा की, उन्होंने जब बताई तो वो केवल सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि भगवान को आमंत्रित और प्रतिष्ठित करने के लिए जो विधि शास्त्रों में निर्धारित है वो हमारे उद्धार के लिए कितनी उपयुक्त है। तो उनके आदेशानुसार दो दिन का कार्यक्रम होगा, 22 और 23। तो 22 तारीख को शाम को संध्या के समय हम उनका एक प्रवचन भी रखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या है और जो जो विधियां करने वाले हैं उसका तात्पर्य क्या है, और एक बहुत ही विशेष विधि होती है प्रतिष्ठा से पहले, उसे कहते हैं शयन आदिवास। शयन आदिवास, नेत्रोन्मिलनम, कौतुक बंदनम, वंदापनम। आप लोगों को लग रहा होगा प्रभु जी बदल के आ गए, थोड़ा पुरोहित बनकर आ गए। तो मैं जितने दो दिन वहां पर था और रास्ते में भी केवल यही ध्यान चल रहा था, तो सपनों में भी वो विधियां आ रही थी कि वंदापनम, कौतुक बंदनम, नेत्र उन्मीलनम। तो सिद्धांत ये है कि भगवान के जो विग्रह बनाता है शिल्पी, तो बहुत से उसमें दोष रहते हैं, क्योंकि बद्ध जीव हम सब हैं और भौतिक पदार्थों को इस्तेमाल कर कर भगवान के जो विग्रह बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत से दोष होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम शिल्पी दोष स्नानम ये एक विधि होती है कि भगवान के विग्रह बनने में जो भी दोष हुए होंगे उन सब दोषों को दूर करने के लिए एक विधि होती है, उसे कहते हैं शिल्पी दोष स्नानम। और उसके पश्चात फिर भगवान, क्योंकि अब विग्रहों में प्रवेश करने वाले हैं, उसमें प्रतिष्ठित होने वाले हैं, तो भगवान आध्यात्मिक संसार से आए हैं, उन्हें हम आह्वान कर रहे हैं अब इन विग्रहों में विराजित होने के लिए। तो भगवान इतनी दूर से जो आएंगे तो एक रात पहले पहुंचेंगे, जैसे बहुत से भक्त पहुंचेंगे ना एक रात पहले, तो ऐसे भगवान एक रात पहले पहुंचेंगे। इसलिए इतना लंबा सफर कर कर भगवान है, कहां से आएंगे? तो बोलो वृंदावन से। ऐसा नहीं यहां वहां कोई इगतपुरी से, कोई संगम नेर यहां वहां से, इगतपुरी नहीं जगन्नाथपुरी भगवान के धाम से वो आएंगे। तो क्योंकि इतना लंबा सफर तय कर कर आएंगे तो भगवान की थकान दूर करने के लिए शयन आदिवास ये एक बहुत ही सुंदर विधि होती है, जहां पर इस मंदिर ये हॉल में पलंग सजाया जाएगा भगवान के लिए, दोनों राधा और कृष्ण के लिए यहां पर पलंग, और बड़े विग्रहों के लिए जो मार्बल के हैं उनके लिए। और वो पलंग बनता है धान्य से, तिल के जो सीड्स होते हैं उनसे, केवल ग्रेन्स से वो पलंग, वहां पर कोई गद्दा वगैरह नहीं होता, इसी की शैया होती। और बहुत से अलग अलग द्रव्य अर्पित होते हैं। तो भगवान राधा और कृष्ण वो पूरी रात, 22 की पूरी रात वो यहां पर सोएंगे, शयन आदिवास उसे कहते हैं। भगवान का पलंग अच्छे से सजाया जाएगा और उसे पहले एक विधि होती है नेत्रोन्मिलनम, कि भगवान अभी सोते समय आंखें बंद करेंगे, तो आंखें बंद करने से पहले आंखें खोलनी है उनकी, है ना। तो वो एक विधि होती है नेत्रोन्मिलनम, और उसके पश्चात बहुत से शुभ अलग अलग द्रव्य पदार्थ भगवान के आंखों के सामने दिखाए जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर विधि है ये। और फिर 23 तारीख को यज्ञ होगा सर्वप्रथम, भगवान को फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय उठाया जाएगा और फिर यज्ञ होगा। यज्ञ के पश्चात फिर अभिषेक, भगवान को नहलाया जाएगा, जैसे कि हम जन्माष्टमी इत्यादि त्योहारों में अभिषेक करते हैं, वैसे इनके विग्रहों को नहलाया जाएगा, अभिषेक होगा। उसके पश्चात फिर भगवान सजेंगे, पहली दफा उनका श्रृंगार होगा, और उस समय प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि होती है जो राधानाथ महाराज, निरंजन महाराज, जनानिवास प्रभु, ये सब जो शुद्ध भक्त, इनके द्वारा वो प्रतिष्ठित होंगे और फिर भगवान की पहली महाआरती होगी। तो केवल इसके विषय में एक आकांक्षा रखना कि ये सारी विधियां भगवान के लिए हम एकजुट होकर करेंगे, यही कितने हमें शुद्ध करने लायक है। और शुद्ध करने के लिए ही भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। तो एक भक्त मुझे प्रश्न पूछ रहे थे हाल ही में, मैं जब उज्जैन गया था, कि भगवान ने तो कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतार लिया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो फिर ये हम इतना महत्व डीटी वर्शिप को क्यों देते हैं, अर्चनम, इतना महत्व अर्चनम को क्यों दिया जाता है। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था। सबसे पहला कारण हमारे भी मन में ये प्रश्न है कि केवल माला हाथ में लो, बस युग धर्म वो है, कितना खर्चा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कब से एक माला झोली कितने में, 15-20 रुपए में आ जाएगी, वो युग धर्म है। तो क्यों हम अर्च विग्रह की प्रतिष्ठापना करते हैं, क्या आवश्यकता है इस कलयुग में हम वैष्णवों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए। तो सबसे पहला कारण भगवान की इच्छा, क्या है, भगवान की ये इच्छा है। जैसे कि जितने सारे वेद हैं उन सब वेदों का सार इस कलयुग में बताया गया है गीता, दुग्धम गीतामृतम महत, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि जितने सारे वेद उपनिषद पुराण हैं उन सब का निचोड़ है भगवद गीता। और उदाहरण दिया है कि जैसे एक गाय होती है, तो गाय का दूध यदि किसी को लेना है तो गाय के मुख से तो नहीं मिलेगा, गाय के पूंछ से भी नहीं मिलेगा, गाय के सींग से भी नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा, स्तनों से। हालांकि दूध मौजूद है गाय के शरीर में, लेकिन उस दूध को यदि प्राप्त करना है तो गाय के स्तनों से वो दूध कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जितने सारे वेद पुराण उपनिषद हैं उन सब का सार, जैसे गाय का सार गाय का दूध है, वैसे सार क्या है? भगवद गीता। और भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उन 18 अध्यायों का सार है भगवद गीता के मध्य के 6 अध्याय, मिडिल 6 चैप्टर्स, और मध्य के 6 अध्यायों का सार है नवम अध्याय। और नवम अध्याय का सार है 34वां श्लोक, कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैमम आत्मानं मत्परायण। यह है नवम अध्याय का सार। तो हम कहां से कहां पहुंचे हैं? सारे वेद उपनिषद का निचोड़ निकाल निकाल कर हम पहुंचे हैं 9.34। क्यों? क्योंकि ये श्लोक, एक ही ये श्लोक है भगवद गीता में, भगवान ने 2 दफा कहा है। कौन है हमारे भक्ति शास्त्री? दूसरी बार कहां भगवान ने यही श्लोक 18वें अध्याय में 65वां श्लोक, यही श्लोक है। तो भगवान ने देखिए कितना महत्व दिया है इस श्लोक को कि रिपीट किया। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझमें मन लगाओ, मन मना और भावना से भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। तो कोई पूछे कि भाई आप में मन कैसे लगाएं, आपका भक्त कैसे बने? तो भगवान कहते हैं मद याजी। याजी का अर्थ क्या होता है? कि मेरे अर्च विग्रह की आराधना करो, मेरे अर्च विग्रहों को नमस्कार करो। तो यहां पर सर्वप्रथम कारण ये कि भगवान की इच्छा, भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त की। सारे उपनिषदों के सार के इस एक श्लोक में भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि जितने कलयुग के बद्ध जीव, हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए भगवान ने अर्च विग्रह की आराधना करने के लिए हमें कहा है। तो ये सर्वप्रथम पहला कारण। दूसरा कारण, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सत्युग में आपस में लोग बिना किसी बैर के जीते थे, बिना किसी ईर्ष्या, बिना किसी द्वेष के जीते थे। परंतु जैसे जैसे अब सत्युग से धर्म की ग्लानी होने लगी त्रेता द्वापर इत्यादि में, तो मनुष्य समाज में क्लेश, द्वेष, हिंसा ये सब दिखना शुरू हुआ। और इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आए, विशेष रूप से द्वापर युग में अर्च विग्रह के रूप में आए भगवान, कि जो भी क्लेश हैं इस भौतिक संसार में, मनुष्य समाज में, वो सारे जो क्लेश हैं जब अर्च विग्रह को मध्य में रख लिया जाता है तो सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अर्च विग्रह को मध्य में रखने से। इसलिए पिछले युगों में जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, जैसे कि कृष्णदेव राय, महाराज प्रताप रुद्र इत्यादि, इनका एक प्रमुख प्रयोजन पूरे राज्य को एक साथ बांध कर रखने का होता था, मंदिर की स्थापना और अर्च विग्रह की स्थापना। क्यों? क्योंकि जब भी, ये आपने सुना भी होगा कि किसी गांव में भी जब भी कोई झगड़ा होता तो वो भगवान के सामने, चलो चलो भगवान के सामने, तो भगवान के अर्च विग्रह के सामने वो जो भी झगड़ा कर रहा है उनको सामने ले आता, चलो यहां पे कान पकड़ो एक दूसरे के दोनों, क्योंकि उनके सामने कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता था। लेकिन कलयुग की स्थिति तो इतनी बदतर हो चुकी है कि आपस तो छोड़ दीजिए, भगवान को देखते हैं तो उनके ऊपर उंगली उठा के, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये भगवान को इतना आप खर्चा क्यों करते हैं। मायापुर में एक बार एक व्यक्ति आईआईटी का एक स्टूडेंट, वो देखा नरसिंह भगवान का अभिषेक चल रहा है और इतने सारा दूध और शहद और ये सब कुछ, तो उसने पूछा ये सब क्या है, ये भगवान को ऐसे ऐसे नहाया जाता है। मतलब ठीक ना, पानी वानी से नहाओ शावर में जाके, ये क्या है, ये शहद और घी ऐसे नहाया जाता है। तब हमारे भक्त उनसे जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो आजकल मार्केट में जाके देखो साबुन कौन कौन से फ्लेवर के आते हैं, हनी फ्लेवर, हनी फ्लेवर के साबुन आते हैं, अलग अलग फ्रूट जूसेस जो हम अभिषेक में देते हैं, अलग अलग कितने सारे फ्रूट के, लेमन फ्लेवर, पोमेग्रेनेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर, कितने फ्लेवर के, और वो सब आर्टिफिशियल। तो मार्केट में ये सब अलग अलग जो फ्लेवर के साबुन शैंपू मिलते हैं, शैंपू में होता है ना, किसी में नींबू डाल रखा है, किसी में संतरा डाल रखा है, किसी में ये डाल रखा है, कितने सारे शैंपू में क्या कुछ नहीं डाल के रख रखा, किसी में आलू डाल रखा है, किसी में। तो वो सब बड़े बड़े बिलबोर्ड पर एडवर्टाइज करेंगे कि नींबू युक्त ये साबुन, नींबू युक्त ये। लेकिन जैसे ही हम ओरिजिनल भगवान को अर्पित करते, इनको क्यों, तो हम पूछते तुमको क्यों, जैसे एक पाश्चात्य देश की बहुत ही वो विश्व सुंदरी मानी गई थी क्लियोपैट्रा। ये क्लियोपैट्रा इतनी बड़ी एक अपने जमाने की सुंदरी मानी गई थी, ये दूध में नहाती थी रोज, और बस उसको हिस्ट्री बुक्स में डालकर उसका गुणगान, क्लियोपैट्रा बेदिंग इन मिल्क। और ये दूध है क्या, आप जब अर्च विग्रह हम अर्पित करते हैं, अरे सब उनका ही है, हम चोरी कर करके अपने ऊपर डाल रहे हैं सब उनका। तो एक एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, जगन्नाथ रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को की, बड़ा बड़ा रथ और इतना बड़ा रथ, वो रथ यात्रा चल रही है, प्रभुपाद से पूछता है व्हाई सच अ बिग कार, भगवान का रथ इतना बड़ा, इतना बड़ा पहिया और इतनी ऊंची वो उसका शिखर, ये सब व्हाई सच अ बिग कार। तो प्रभुपाद ने पूछा हाउ बिग इज द कार ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, वो यूएस प्रेसिडेंट की गाड़ी देखो, वो एक लोकल ट्रेन जैसी इतनी लंबी होती है, उसको वो लोग लिमोजिन बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, मतलब वो ड्राइवर देश के एक कोने में बैठा रहता है और वो जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो गाड़ी के दूसरे कोने में। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया अरे ही इज जगन्नाथ, ही इज द बिगेस्ट, सो व्हाट इज दिस स्मॉल लिटिल कार्ट फॉर हिम, स्मॉल लिटिल कार्ट, अरे वो जगत के नाथ है, तुम्हारा एक चुन्नू मुन्नू कोई राष्ट्रपति के लिए तुम इतनी बड़ी गाड़ी निकालते हो और ये जगत के नाथ, इनके लिए ये क्या इतना सा छोटा सा रथ। तो अब जैसे तिरुपति बालाजी, कितने वर्षों से उनकी आराधना हो रही है, 1000 वर्ष हो चुके हैं तिरुपति बालाजी की आराधना हो रही है, अब जाके तिरुपति बालाजी के जितने आभूषण जेवर वगैरह हैं वो 40,000 करोड़ तक के हैं। तो एक व्यक्ति पूछ रहा था, ये क्या है ये आपके भगवान? कितना? 40,000 करोड़ वर्थ ऑर्नामेंट्स फॉर तिरुपति बालाजी। तो जब उनको ये पूछा गया प्रश्न, बोला पेपर खोलो 2G स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, चारा घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, कितना? 1,70,000 करोड़ एक आदमी, और वो भी कितने 2-4 वर्षों में। और ये 1,000 से बेचारे तिरुपति बालाजी वहां खड़े हैं। और उनके लिए ये प्रश्न पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों? हम बता रहे थे, एक मंत्री रिबन काटने आता है, 50 लाख रुपया सिक्योरिटी लग जाती है। खाली एक रिबन काटने का खर्चा कितना है? 50 लाख। तो ये कलयुग में ये जो सब कुछ विकृत हो चुका है, बताया जाता है पहले सत्युग में लोग अपना सब कुछ अर्चविग्रह को अर्पित कर देते थे, सब कुछ। और अर्चविग्रह यदि कुछ दे दें बचा हुआ तो उससे अपना जीवन यापन करते थे। फिर विकृति हुई त्रेता युग में। तो कहते त्रेता युग में वो एक सर्कल बनाते थे और जितना भी उनका धन था ऊपर उछालते थे, जो सर्कल में गिर गया वो भगवान का, जो सर्कल के बाहर गिरा वो उनका। फिर द्वापर युग में उन्होंने एक लाइन खींच दी और पैसा ऊपर फेंका, जो राइट साइड में गिरा भगवान का, जो लेफ्ट साइड में गिरा उनका। अब देखिए कलयुग के बाशिंदे, तो कलयुग के बाशिंदों ने किया क्या कि पैसा लिया ऊपर फेंका और भगवान से कहा जो आपको पकड़ पाओ पकड़ लो, बाकी मेरा। तो ये हमारे हाल कलयुग के। श्रील प्रभुपाद अर्चविग्रहों को इतना उन्होंने महत्व दिया। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि हमारी जो याचना है वो एक पत्र के समान है और अर्चविग्रह की तुलना उन्होंने एक लेटर बॉक्स से की। आप चाहे कितना भी अच्छा पत्र लिखो, इतना भी लंबा चौड़ा पत्र लिखो, उसको एकदम बड़े बड़े अच्छे सुनहरे एनवलप में डालो, स्टैंप वैम्प लगाओ, लेकिन लेटर बॉक्स में यदि नहीं डालो तो, और कौन सा ऐसा नहीं कोई भी लाल डब्बा दिख रहा है कहीं पे, तो कोई भी लाल डब्बे में डाल दिया। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, द ऑथोराइज्ड लेटर बॉक्स विल टेक द लेटर टू द एड्रेसी। उसी प्रकार से अच्च विग्रह हमारी याचना को वो स्वीकार करते हैं, जैसे कि ऑथोराइज्ड लेटर बॉक्स स्वीकार करता है उस पत्र को। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न जो हमारे मन में यदि आया होगा कि क्यों कलयुग में अर्चनम को महत्व दिया गया है, तो सबसे पहला कारण भगवान की इच्छा, और दूसरा कारण श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एक कलह प्रधान युग है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द डीटीज, हमारे कलह को दूर करने के लिए। अर्च विग्रह हमारे चाहे परिवार में हो, चाहे हमारे हृदय में हो, हमारे जीवन में अर्च विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न कि अर्चनम करने के लाभ क्या है। जैसे कि अभी श्री श्री राधा कृष्ण के अर्च विग्रह स्थापित होंगे तो क्या लाभ हैं अर्च विग्रह की आराधना करने के। सबसे पहला लाभ, हृदय का शुद्धिकरण। हम सब भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो सबसे पहला लाभ अर्च विग्रह की पूजा करने का, हृदय का शुद्धिकरण। श्रीमद् भागवत में उदाहरण है, विदुर को जब दुर्योधन ने दुत्कार कर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया युद्ध से पहले, तो विदुर जी वो तीर्थ यात्रा करने गए। युद्ध के समय विदुर जी और बलराम जी नहीं थे युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो ये प्रश्न पूछा गया कि भाई तीर्थ यात्रा उन्होंने कहां कहां की? तो जहां जहां भगवान श्री कृष्ण विष्णु के तीर्थ हैं वहां पर वो गए। तो भाई उनके सबके स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे उस समय धरती पर, तो उन्हें तीर्थ यात्रा करने क्या जरूरत थी? अरे जो उन सब के स्रोत साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मौजूद थे, तो क्यों आवश्यकता थी तीर्थ यात्रा करने की? तो श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कई बार अर्च विग्रह जिस सही तरीके से हृदय को शुद्ध करता है, अर्च विग्रह के का जो प्रभाव है वो हृदय को जिस प्रकार से शुद्ध करता है और कोई नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं साक्षात भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के अर्च विग्रह होते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए विदुर जी इन सब तीर्थों में जाकर भगवान के अर्च विग्रह जो प्रस्थापित थे, जाने का एक ही मात्र कारण था कि वो अपना हृदय शुद्ध करना चाहते थे। तो ये पहला कारण या पहला लाभ अर्चनम का, हृदय शुद्धिकरण। और दूसरा लाभ अर्चनम का बताया गया है कि जहां पर भी भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में प्रस्थापित होते हैं वो पूरे स्थान को भगवान शुद्ध कर देते हैं, उसे आध्यात्मिक बना देते हैं। जैसे कि इस कॉलोनी को वृंदावन कॉलोनी कहते हैं ना, तो हालांकि नाम दे दिया वृंदावन कॉलोनी, लेकिन वृंदावन चंद्र कहां थे? लेकिन भगवान अपने अर्च विग्रह में जहां मौजूद हो जाते हैं वो जगह यदि वृंदावन कॉलोनी न भी कहलाई जाए, जैसे कि प्रभुपाद ने लंदन में सोहो स्ट्रीट, जो कि एकदम पापियों से भरी हुई स्ट्रीट है, वो हर प्रकार के गलत काम वहां पर होते हैं, वहां पर राधा लंदन ईश्वर, लंदन के ईश्वर अर्थात पूरे लंदन को शुद्ध करने के लिए प्रभुपाद ने कहा भी, श्री श्री राधा लंदनेश्वर हैज इनकार्नेटेड इन लंदन टू प्यूरिफाई द एंटायर लंदन एंड टू अट्रैक्ट द वेस्टर्न ब्रिटिश बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे मैं जब पहली बार राधा लंदनेश्वर का दर्शन करने गया, इतने सुंदर भगवान का विग्रह है वो, बहुत ही सुंदर। और यही मेरा एक साक्षात्कार था कि ये जो मंदिर है ये जिस स्थान में स्थित है, ये मंदिर से अब बाहर निकलो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप एक कदम भी भक्ति में टिक पाओगे क्या, इतना वहां पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। तो केवल श्री श्री राधा लंदनेश्वर अपने प्रभाव से टिकाए रखे हैं पूरे स्थान को, शुद्ध बनाकर रखे हैं। तो वहां पर एक, मैं जब दर्शन ले रहा था तो एक ऐसे ही ब्रिटिशर विद्यार्थी टाइप था, वो टीनेजर था, वो आया, वो देख रहा था, पहली दफा मंदिर में आया था, वो देख रहा था कि क्या करते क्या है ये हरे कृष्णा, हो क्या रहा है यहां पे सब। और देखा राधा लंडनेश्वर को, तो मुझसे पूछता है कि देखिए उसका दृष्टिकोण यही है वहां रहने के वजह से, तो पूछता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो मैंने कहा या ओरिजिनल। और फिर मैंने कहा एंड ही इज द फ्रेंड ऑफ एवरीवन, सुरदम सर्वभूतानाम, सबके सुरत केवल यही है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे, जैसे राधा पैरिसीश्वर एक और हैं भगवान के अर्चक, राधा पैरिस के ईश्वर, लंदन के ईश्वर, इन सब स्थानों को वैकुंठ बना दिया श्रील प्रभुपाद ने। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज जब वो, उनको कैंसर हुआ और वो जब अपना प्राण छोड़ रहे थे 2005 में अमेरिका में गीता नगरी जो फार्म है, राधा दामोदर के अर्च विग्रह, राधा दामोदर बस पार्टी की जो अर्च विग्रह वहां पर हैं, बहुत ही सुंदर। तो सभी कह रहे थे कि महाराज अब हम आपको वृंदावन ले चलते हैं, मायापुर ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो अवश्य ही भगवत धाम प्राप्त करता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा नहीं, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन और मायापुर सारे विश्व में खोल दिए अर्च विग्रह की स्थापना कर। इसलिए मैं अपने प्राण यहीं अमेरिका में श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्थापित इस इस्कॉन मंदिर में छोड़ूंगा। दिस इज नॉन डिफरेंट देन वृंदावन एंड मायापुर। तो ये जो दूसरा लाभ अर्च विग्रह की प्रतिष्ठापना से हमें मिलता है वो क्या है कि उस स्थान को भगवान साधारण या सत्वगुणी तो छोड़ दीजिए, भगवान उसे अपना धाम बना देते हैं। अर्थात फिर हम कहां रहेंगे, नासिक में भगवान के ब्रज धाम में। तो ये दूसरा लाभ भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना का। तीसरा लाभ शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे अंदर जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं, नॉन डिवोशनल टेंडेंसीज, इन भौतिक प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक रूप अर्च विग्रह देते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, इफ यू हैव टेंडेंसी टू ड्रेस वेरी ऑपुलेंटली, है ना, कलयुग में लोग कितना खर्चा करते हैं अपने शरीर को सजाने में, ये थोप दिया, ये लेप लिया, ये पहन लिया। तो प्रभुपाद कहते थे टू प्यूरिफाई दैट टेंडेंसी ऑफ ड्रेसिंग वन सेल्फ यू डू इट फॉर कृष्णा, भगवान को सजाइए आप। इसलिए जब राधा गोपीनाथ मंदिर में हमने राधा गोपीनाथ के अर्च विग्रह का श्रृंगार शुरू किया, तो मुझे अभी भी याद है कि हफ्ते में एक दिन हमारा ड्रेसिंग होता था और पूरा हफ्ता हम जो भी बंबई में जहां पर भी कोई फ्लावर मार्केट में कुछ फूल को देख लिया या किसी के बागीचे में कोई फूल देख लिया, तो मन में केवल एक ही विचार आता था, भगवान के टर्बन पे कितना अच्छा लगेगा ये फूल, भगवान के कानों में बालों में ये फूल सजा हुआ कितना अच्छा लगेगा। और वही हम जब इस्कॉन में नहीं तो फूल देखकर क्या याद आता था, हाँ तो फूल देखकर हमें कुछ तो याद आता था, लेकिन जब भगवान के अर्च विग्रह की आराधना प्रारंभ करते ही जो भी भौतिक प्रवृत्तियां हैं उसे हम किस प्रकार से आध्यात्मिक बना सकते हैं। प्रभुपाद ये भी उदाहरण देते, यदि किसी को बहुत ऑपुलेंट खाने की इच्छा है कुछ, तो भगवान के अर्च विग्रह को जब वो बहुत आलिशान पकवान पका पका कर भोग चढ़ाता है, तो वो जो उसकी प्रवृत्ति है वो सब करने की, वो ये नहीं कि खत्म हो जाती, वो शुद्ध होती है, जो कि खत्म होने से ज्यादा ऊंची मानी गई है। दैट प्रोपेंसिटी बिकम्स प्यूरिफाइड नॉट किल्ड। तो ये जो एक तीसरा लाभ भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने का। चौथा लाभ 11वें स्कंद में बताया गया है कि ये जो हमारा अनियंत्रित मन है, इस अनियंत्रित मन को नियंत्रण में लाने के लिए अर्च विग्रह बहुत सहायक होते हैं। उदाहरण दिया गया है कि हमारा ये जो अनियंत्रित मन एक अनियंत्रित पागल घोड़े के समान है, और घोड़े को एक खंबे से जब बांध दिया जाता है तब वो उथल पुथल नहीं मचा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो उस खंबे के समान है। इट इज लाइक दैट पोल, इट इज लाइक द स्टड, जहां पर हमें हमारा मन बांध के रखना है। तो चाहे हम कहीं पर भी जाएं, मंदिर के बाहर जाएं, कहां काम धंधा कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, कहीं परिवार को चला रहे हैं, अर्च विग्रह का दर्शन करने के पश्चात हमारे मन में केवल वो ये जो अनियंत्रित घोड़े रूपी मन है, इसके लिए केवल वो एक खंबा ध्यान में रखना चाहिए। क्या? भगवान के चरण कमल। और भगवान के चरण कमल का ध्यान हर समय हम यदि उस प्रकार से रखते रहेंगे तो ये जो हमारा अनियंत्रित मन है वो टिक कर भगवान के चरणों में ही रहेगा। और मन यदि भगवान के चरणों में टिक कर रह गया तो ये मन ही, ये जो चेतना है हमारी, ये ही हमारे शरीर को शुद्ध बनाएगा और हमारी आत्मा को शुद्ध कर आध्यात्मिक संसार में ले जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक लाभ है अर्च विग्रह का ध्यान, अर्च विग्रह का दर्शन, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान, कि हमारा अनियंत्रित मन नियंत्रण में आता है। पांचवा लाभ, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, जड़ेंद्रिय ताहे काल, सब जड़ इंद्रियां हैं और इतनी जड़ हो चुकी हैं कि बोलते ना जंग, इस लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाता है ना, क्या गंज बोलते हैं, वो जंग चढ़ जाता है। तो ये सारी हमारी इंद्रियां इतनी जड़ की उठाए नहीं उठती, कुछ कराए नहीं करती, कुछ भगवान का हरिनाम लेने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हिला हिला के इन इंद्रियों को जगाना पड़ता है कि उठो करो कुछ, नाम लो, आओ सुनो, मंदिर में झाड़ू उठाओ, कुछ करो, काम करो। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं इतनी जड़ हो चुकी हैं, इन इंद्रियों को अर्च विग्रह अपनी सेवा में लगाकर शुद्ध करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण, अम्बरीश महाराज ने अपनी आंखों को शुद्ध किया भगवान के अर्च विग्रह के सुंदर विग्रह का दर्शन में लगाकर, अपने कर्णों को शुद्ध किया भगवान के अर्च विग्रह की लीला कथा श्रवण करके, अपने हाथों को पैरों को शुद्ध किया भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, भगवान के मंदिर तक चलकर जाकर हाथों से सेवा करने से उनको शुद्ध किया। हर एक अपनी इंद्रिय को अम्बरीश महाराज ने अर्च विग्रह से संबंधित कर इंद्रियों को शुद्ध किया। तो यदि हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना है तो जैसे होता है ना, पानी को शुद्ध करने के लिए आजकल कितने सिस्टम्स हैं, ये फिल्टर वो फिल्टर अलग अलग, वैसे हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के अर्च विग्रह, हमारे जितने सारे प्रदूषण हैं उनको वो शुद्ध कर कर हमारे अंदर प्रस्थापित करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन बोलते हैं ना उसको भी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो हालांकि हम भगवान का इंस्टॉलेशन सेरेमनी करने वाले हैं, लेकिन अर्च विग्रह की कृपा ऐसी है कि वो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं? कृष्ण प्रेम इंस्टॉल करते हैं हमारी इंद्रियों को। राधानाथ महाराज अपने इस प्रकार के क्लास में कह रहे थे कि व्हाट क्वालिफिकेशन डू वी हैव टू वर्शिप द डीटीज। ये हमारा शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को हम ऑल्टर में लेके जाते हैं भगवान के अर्च विग्रह के सामने उनका श्रृंगार करने के लिए। सब जगह से बदबू बदबू आ रही है, घिस घिस के नहा नहा के जाना पड़ता है भगवान के अंदर अर्च विग्रह के सामने। We have such filthy bodies and filthy hearts, भगवान महाराज बोल रहे थे। Our hearts are filthy, stinking, and our body is stinking. But the Lord is so merciful that He accepts our stinking heart and stinking body to somehow purify us. तो हमें यही नहीं समझना चाहिए कि मेरे वजह से भगवान को खाना कौन खिलाएगा, भगवान भूखे रह जाएंगे, भगवान का श्रृंगार कौन करेगा, उठाएगा कौन, सुलाएगा कौन। नहीं, हमें उठाने के लिए भगवान आए। लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि यहां चलो मैं अर्च विग्रह को मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं यूज करूं, वो प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन ये कि हां, प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि अर्च विग्रह की कृपा से मेरी इंद्रियां शुद्ध होगी और उन शुद्ध इंद्रियों से फिर मैं शुद्ध भाव से उनकी सेवा करूं, ये भाव होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे, क्योंकि जैसे हम भौतिक संसार में जाते हैं, कितने अनगिनत पापी जीवों के साथ संग करते हैं, सब जगह वातावरण भरा हुआ है रजोगुण और तमोगुण से। तो इतने रजोगुण तमोगुण और पाप से हम घिरे हुए, हमारी इंद्रियां उसी में पूरा लिप्त रहती हैं, रजोगुण तमोगुण और पाप में लिप्त रहती हैं। इसलिए अर्चनम की तुलना एक स्नान से की गई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम क्या है, सर्वात्म स्नपनम। स्नपनम का अर्थ है ये एक शाही स्नान होता ना, शाही स्नान, ये एक शाही स्नान है। तो वैसे ही अर्चनम की जो सेवा हम करते हैं, तो जितने प्रदूषण इस भौतिक संसार के हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं वो अर्च विग्रह की कृपा से सारे धुल जाते हैं, हालांकि हम फिर बाहर जाकर वापस डाल लेते हैं। तो जितनी बार हम अर्च विग्रह के सामने आकर दर्शन लेने मात्र से, केवल अर्च विग्रह का दर्शन लेने मात्र से, यहां तक बताया गया है कि भगवान का जो चक्र होता है, प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति जिस मंदिर में होती है तो यहां पर चक्र प्रतिष्ठापना भी होगी, तो चक्र का दर्शन करने मात्र से, चाहे आप वो काटे गली में हो, चाहे जो भी गली में, वहां से आप चक्र का दर्शन करने मात्र से शुद्धिकरण चालू। और कितनी अन्य अर्च विग्रह की सेवाएं हैं, गोविंदानंद प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उनके पास पूरा लिस्ट है। और वो लिस्ट आप देखो, गोविंदानंद प्रभु के पास जो सेवा का लिस्ट है वो सब आपके महाक्लीनिंग का सामग्री है, उनके पास हम सबके महाक्लीनिंग का सामग्री है वो लिस्ट में, कि हमारा शुद्धिकरण, हमारे सफाई अभियान, शुरू हो जाएगा। तो हमारी इंद्रियों का सफाई अभियान अर्च विग्रह वो अपना जिम्मा लेते हैं उनके ऊपर। हमारे इंद्रियों को शुद्ध, मन को शुद्ध करते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, जगह स्थान को शुद्ध करते हैं। और यही एक चीज है कलयुग में जो आपको कहीं खरीदने पर भी नहीं मिलेगी, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, शुद्धता, शुद्ध साफ हृदय, शुद्ध साफ इंद्रियां, ये कहीं पर नहीं मिलेगी। तो अर्च विग्रह की कृपा से ये एक लाभ बद्ध जीवों को प्राप्त होता है। और अंततः छठा लाभ अर्च विग्रह की सेवा करने का है, इस भौतिक संसार से वैराग्य, इस भौतिक संसार से मुक्ति। क्योंकि जितना हम हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारा धन हो, चाहे जो कुछ हमसे संबंधित, हम यदि भगवान को अर्पित करें, जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद ने इसको शुरू किया अमेरिका में, तो प्रभुपाद कहते थे ऑफर एवरीथिंग टू द डीटीज। अब इन्हें तो पता नहीं था कि ये अर्च विग्रह क्या होते हैं और इन्हें सब कुछ अर्पित करना होता है। तो कई हिप्पी अपना जींस पैंट और टी शर्ट भी ऑफर करते थे भगवान को। जैसे हम बता रहे थे कि एक व्यक्ति राधा गोपीनाथ मंदिर में आया और उसने पुजारी को बॉक्सिंग ग्लव्स दिया, राधा गोपीनाथ को बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफर करो। पुजारी ने पूछा, भाई बॉक्सिंग ग्लव्स क्या भाई, पहली कोई अर्चना विधि में लिखा नहीं, भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तो एम कहा है, उसमें कहीं बॉक्सिंग ग्लव्स इंक्लूड नहीं किया। देखो भगवान को भी कलयुग में क्या क्या स्वीकार करना पड़ता है, जींस पैंट, कोई जींस पैंट ऑफर कर रहा है, महा जींस पहनूंगा मैं, बॉक्सिंग ग्लव्स। तो उसको जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा टूर्नामेंट है बॉक्सिंग का, तो ये महा बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के जब मैं मारूंगा तो उसको महा मिलेगा। उसको गोपीनाथ का महा मिलेगा। तो ये सब कुछ से वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उसके साथ साथ राग भगवान में, सर्वप्रथम भगवान में राग या आसक्ति, ऐसे ऐसे भक्त इस्कॉन में हैं कि अर्च विग्रह से ऐसी आसक्ति उनकी है। एक श्रील प्रभुपाद की शिष्या हुई थी लादिनी माता जी, जिनके आराध्य देव थे जगन्नाथ जी और बलराम जी विशेष रूप से, और वो जहां कहीं पर भी जाती वो अपने विग्रह को साथ में लेकर जाती, बड़े बड़े विग्रह। तो एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तो ट्रेन में वो एसी टू टायर में उनके जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा के लिए सीट बुक किया है पूरा, और वो नीचे सोई। तो जब टीसी टिकट चेक करने आया तो देख रहा है कि ये बर्थ किसके नाम पे है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे नाम पे है, लेकिन ये रहे यहां पर रहेंगे। तो उसे इतना अच्छा लगा कि कितनी आसक्ति है और कितना पर्सनल है, कि उनको उन्होंने अपना खुद का सीट दिया और वो नीचे सो रही थी। तो ऐसे इतने सारे इस्कॉन के भक्त हैं, अर्च विग्रह के साथ क्या क्या उनका आदान प्रदान हुआ है। हमारे गौर पूर्णिमा के इस फेस्टिवल का थीम हमारा रहेगा डीटीज, अलग अलग इस्कॉन में और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में अर्च्य विग्रहों के संदर्भ में, जैसे एक बंबई के हमारे भक्त बता रहे थे, उनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पर, और एकादशी का दिन, और क्या है कि एकादशी के दिन भक्त ज्यादातर जो खुद खाते हैं वही ऑफर कर देते हैं भगवान को, है ना, सावा चावल या साबूदाना जो भी कुछ। तो एकादशी का दिन, अब जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी नहीं होती, उल्टा लटका रखा है उनको एकादशी को, तो जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी नहीं। तो ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि कीर्तन के अंत में जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा वो अपने आप ऑल्टर से टर्न हो गए, वो ऐसा किचन की ओर, उनका किचन राइट साइड में था, तो तीनों जैसे बोलते ना वो परेड में होते ना राइट टर्न वैसा, तो तीनों राइट टर्न वो किचन की ओर। और ऐसा नहीं था कि वो कुछ कोई वाइब्रेशन की वजह से, भूकंप की वजह से कुछ हुआ था, नहीं। तब इन्हें वो ध्यान में आया कि ये जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी के लिए, जैसे कि हमारे बंबई में लाल बाग में एक भक्त हैं, छोटा सा उनका उनका कमरा, उनका घर इतना छोटा होगा, वो जो प्रभुपाद का वो जो है सेक्शन वहां जहां प्रभुपाद है, बस उससे थोड़ा सा बड़ा, इतना उनका घर है। वहां पर बड़े बड़े अर्च्य विग्रह, ये जो इतने बड़े अर्च्य विग्रह, ये जो यहां पर हमारा साउंड सिस्टम का बॉक्स है, इतना बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने छोटे से घर में, और हर शनिवार को 56 भोग ऑफर होता है। और एक बार एकादशी के दिन हम लोग वहां पर गए थे, एकादशी के 56 भोग, वो भी ऐसा नहीं कि मार्केट से ले आए, हाँ ये हलवाई वो हलवाई से लाल लो के वहां पे लगा दिया, वो करते हैं कई लोग। एक बार हुआ था, एक दूसरे कार्यक्रम में मैं गया था बांद्रा में, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग, उन्होंने कहा कि हम भी 56 भोग करेंगे आज, आप आइए कार्यक्रम के लिए, 56 भोग कार्यक्रम। तो देखा कि एक मिठाई घसीटा राम हलवाई से, एक मिठाई इस राम हलवाई से, उससे हलवाई से, और फिर फल वल यहां पे से रख दिए, तो 50 तो ऐसे ही हो गए। तो ऐसे नहीं, यहां पर ये डिवोटी, इनका आर्टिकल बीटीजी में आया था, ये डिवोटी वहां पर, और उनके एकदम स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं कि भगवान के जो भी बर्तन हैं वो अलग नल में धोए जाते हैं, और हर शनिवार को जो 56 भोग जगन्नाथ जी को लगता है, उसके बाद फिर वो पूरी जो चाल है, चाल में उनका एक घर है, छोटा सा कमरा है घर क्या, वो पूरी चाल लाइन लगा लेती है, सबको महाप्रसाद जगन्नाथ जी का बांटते। तो जैसे ही एक बद्ध जीव भगवान के अर्च विग्रह के संबंध में आता है, तो कैसे उसका शुद्धिकरण प्रारंभ होता है, ये केवल हम सुनकर नहीं जान सकते, इसका अनुभव हमें करना है। और वही अनुभव देने के लिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से नासिक धाम में, नासिक के इस्कॉन मंदिर में आने वाले 23 तारीख को भगवान श्री श्री राधा कृष्ण अपने सुमधुर और परम कृपालु रूप में अवतरित होने जाने वाले हैं। तो हम अनुरोध करते हैं सभी भक्तों से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए, और आपसे जितना ज्यादा हो सके भगवान के अर्च विग्रह की सेवाओं में, बहुत सी सेवाएं होंगी, छोटी सी छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सी बड़ी सेवा हो, भगवान के लिए कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं है। भगवान के लिए भगवान देख रहे हैं कि कौन कितने भाव से उनकी सेवा कर रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि मंद भाग्य सब कुछ मंद है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबके हृदय में मंदिर खोल दिया और स्थापना प्रतिष्ठापना किसकी की? हरिनाम की। तो हां, यदि हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं अर्पित कर सकते तो भगवान को हरिनाम बहुत अच्छा लगता है। तो हरिनाम के द्वारा हम अपनी साधना को बढ़ाते हुए भगवान जब आते हैं तो भगवान आने से पहले भगवान के जो पार्षद हैं वो सब तैयारी करते हैं भगवान के अवतार की। तो बहुत से भक्त लगे हुए हैं, भगवान अवतरित होने वाले हैं 23 तारीख को, तो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हम भी हमारे ओर से जो भी योगदान हो सके, शारीरिक रूप से, हमारे मानसिक रूप से, हृदय से, जिस भी तरीके से, कर्मणा मनसा वाचा, हम भगवान के आमंत्रण को पूर्ण सिद्ध करने के लिए हम जुट जाएं। यही अनुरोध हम करेंगे सारे उपस्थित भक्तों से और अनुपस्थित भक्तों से भी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की
जय।